नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ान संचालन फिर से शुरू कर दिया है। ओपेक से जुड़े देशों ने अगले महीने के लिए तेल उत्पादन में वृद्धि की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के ईरान के नए बहुस्तरीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी अवलोकन क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित सबसे बड़ी निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्सी आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
पश्चिम एशिया स्थिति पर सरकार ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। वहीं पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद आज हुई वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। सदस्य देशों ने कहा कि वे बाजार की स्थितियों पर नजर रखकर उसका आकलन करेंगे। भू राजनीतिक संकट के बीच लगातार तीसरी बार मासिक तेल उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल ना हो। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि ईरान के नवीनतम प्रस्ताव में तनाव कम करने की एक चरणबद्ध योजना की रूपरेखा दी गई है जिसमें तात्कालिक संघर्ष प्रबंधन को दीर्घकालिक परमाणु विवाद से अलग किया गया है। इस योजना के तहत ईरान ने संकेत दिया कि यदि अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध सहित आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वह होर्मुज़ जल मध्य के आसपास तनाव कम करने को तैयार है। ईरान ने परमाणु वार्ता से अलग समुद्री व्यापार और तेल प्रवाह को बहाल करने का भी प्रस्ताव दिया है। परमाणु मुद्दे पर ईरान ने संकेत दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन पर नियंत्रण और कड़ी निगरानी पर विचार कर सकता है, लेकिन उसने कहा कि यह केवल एक व्यापक समझौते के हिस्से के रूप में ही हो सकता है जिसमें प्रतिबंधों में राहत शामिल हो। ईरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत नागरिक उपयोग के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने के अपने अधिकार की औपचारिक मान्यता चाहता है। ईरान यह आश्वासन भी चाहता है कि इस संबंध में कोई भी समझौता टिकाऊ हो जिसे एक तरफा समाप्त ना किया जा सके। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
अमेरिका ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की टीम में शामिल श्री स्टीवर्ट एक अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान विदेश विभाग में ईरान से संबंधित मुद्दों पर काम किया है। ईरानी जहाजों की जब्ती पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी की ईरान ने आलोचना की है। श्री ट्रंप ने अमरीकी कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसा कहकर अमरीका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आवाजाही के खिलाफ अपने आपराधिक कृत्य को सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में पिछले एक दिन में 10 लोगों की मौत हो गई और 76 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार खेरसोन क्षेत्र में 3 जबकि ओडेसा, डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़्या क्षेत्रों में 2-2 मौतें हुई और सुमी क्षेत्र में 1 मौत हुई। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने लगभग 334 ड्रोन दागे, जिनमें उत्तर पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र सबसे अधिक लक्षित क्षेत्रों में से एक था। आयातित ऊर्जा पर देश की अत्यधिक निर्भरता के कारण पाकिस्तान दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन वाले स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल हो गया है। बढ़ती लागत और आयात में बाधा के कारण देश की पहले से ही नाजुक स्थिति पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि जारी रहने पर पाकिस्तान में महंगाई दोहरे अंकों में बनी रहने की आशंका है। फिलीपींस तटरक्षक बल ने घोषणा की है कि वे स्प्रैटली द्वीप समूह के पास सक्रिय चीन के 4 अनुसंधान पोतों को हटाने के लिए विमान और पोत तैनात करेगा। तटरक्षक बल के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ये पोत फिलीपींस सरकार की अनुमति के बिना समुद्री अनुसंधान कर रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों का उल्लंघन है। फ्रांस में इंग्लिश चैनल पार करने के प्रयास में एक नाव के उत्तरी तट से टकरा जाने के बाद 2 महिलाओं की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। 82 लोगों को ले जा रही ये नाव बोलोग्न-सुर-मेर के पास हार्डलॉट समुद्र तट से रवाना हुई थी। फिलीपींस में मायोन ज्वालामुखी के फटने के बाद राजधानी मनीला के दक्षिणी क्षेत्र से हजारों लोगों को निकाला गया। प्रशासन ने जनता को ज्वालामुखी के 6 किलोमीटर तक के दायरे से दूर रहने की सलाह दी है। ज्वालामुखी विज्ञान संस्था ने अलर्ट स्तर 3 जारी किया और भूस्खलन तथा लावा बहने की भी चेतावनी दी है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। यह अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता और विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने का है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
चीन की सरकार ने दुनिया भर में पत्रकारिता और सूचना के अधिकार के खिलाफ दमनकारी अभियान चला रखा है। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने अपने नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में ये बात कही है। चीन ने 110 पत्रकारों और 3 मीडिया कर्मियों को हिरासत में रखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ान संचालन फिर से शुरू कर दिया है। ओपेक से जुड़े देशों ने अगले महीने के लिए तेल उत्पादन में वृद्धि की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के ईरान के नए बहुस्तरीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।